एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जिसने अमेरिका में नस्ल और न्याय, खासकर जेल व्यवस्था पर जो बहस चल रही है, उसे वाकई हिलाकर रख दिया है।
हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है द न्यू जिम क्रो, मैस इनकार्सरेशन इन द एज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, मतलब नवीन जिम क्रो, सामूहिक कैद का युग। और इसकी लेखिका है मिशेल अलेक्जेंडर। और ये किताब एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाती है ना?
हाँ, सवाल बहुत सीधा और गहरा है। क्या अमेरिका में जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को, और खासकर अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसका असली मकसद क्या है? क्या ये वाकई सिर्फ अपराध रोकना है? या फिर ये समाज पर नियंत्रण रखने का और एक तरह से नस्लीय भेदभाव को बनाए रखने का एक नया तरीका है? मतलब पुराने जिम क्रो कानूनों जैसा ही कुछ, जो नस्ली अलगाव को कानूनी बनाते थे।
और ये आज भी इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, उसकी जीत के बाद भी क्या नस्लीय असमानता खत्म हुई, या उसने बस अपना रूप बदल लिया है?
सही बात है। अलेक्जेंडर का तर्क यही है कि ये जो पूरी व्यवस्था है, जिसे अक्सर कहा जाता है कि ये कलर ब्लाइंड है, मतलब नस्ल वगैरह नहीं देखती।
हाँ, कि सबके लिए बराबर है।
हाँ, लेकिन वो कहती हैं कि ये दावा ही असल में भेदभाव को छुपाने का काम करता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये जो मास इनकार्सरेशन यानी सामूहिक कैद है, इसका असली रोल, इसका असली लक्ष्य क्या है?
बिल्कुल। तो पहले मिशेल अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक अकादमिक या लेखक तो है नहीं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जानी मानी सिविल राइट्स लॉयर हैं, मतलब नागरिक अधिकार वकील, और लीगल स्कॉलर भी हैं, कानूनी विद्वान।
उन्होंने अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन, ACU जिसे कहते हैं, वहां नस्लीय न्याय प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। तो उन्होंने नस्लीय प्रोफाइलिंग जैसे मुद्दों पर बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम किया है।
हाँ, मतलब वो जो होता ना कि पुलिस सिर्फ किसी की नस्ल देखकर ही शक करने लगे या रोक ले, उस पर उन्होंने सीधे काम किया है।
और उनका अनुभव सिर्फ यहीं तक नहीं है, उन्होंने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में भी काम किया है, जस्टिस हैरी ब्लैकमन के क्लर्क के तौर पर।
अच्छा।
हाँ, तो उन्हें अमेरिकी कानूनी सिस्टम की जो सबसे ऊंची सीढ़ी है, वहां की भी अंदरूनी समझ है।
तो मतलब जमीनी हकीकत भी पता है, सिस्टम ऊपर से कैसे काम करता है वो भी देखा है, और फिर गहरा एकेडमिक रिसर्च भी किया है। ये कॉम्बिनेशन उनकी बात को काफी वजन देता है।
सही कहा। और एक दिलचस्प बात ये भी है, जो आपने पहले बताई थी कि शुरुआत में वो खुद भी पूरी तरह मानी भी नहीं थी इस बात पर।
हाँ, उन्हें खुद शक था कि ये जो ड्रग्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया, ये वाकई नस्लीय तौर पर पक्षपाती है या नहीं। लेकिन फिर अपने काम से, अपने क्लाइंट्स के अनुभवों से और सालों की रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची। तो ये जो उनका अपना सफर है, ये उनके तर्कों को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है।
तो बातें हैं किताब के मूल तर्क पर। ये न्यू जिम क्रो, ये है क्या आखिर?
देखिए, अलेक्जेंडर का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि अमेरिका ने नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था को खत्म नहीं किया है, बस उसका रूप बदल दिया है।
रूप बदल दिया है मतलब?
मतलब पहले गुलामी थी, फिर वो जिम क्रो कानून आए जो सीधे सीधे भेदभाव करते थे, और अब खासकर ये वॉर ऑन ड्रग्स यानी ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के नाम पर, जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को, खासकर अश्वेत पुरुषों को, जेल में डाला जा रहा है, और फिर जेल से निकलने के बाद भी उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। वो कहती हैं कि ये आज के जमाने की नस्लीय नियंत्रण प्रणाली है।
और ये सिर्फ जेल की सजा तक की बात नहीं है, आपने कहा हाशिए पर धकेलना। किताब उन चीजों पर भी फोकस करती है जिन्हें वो कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस कहती हैं, मतलब सजा काटने के बाद भी जो चलता रहता है।
बिल्कुल, वही तो असल अदृश्य सजा है, जैसे वोट देने का अधिकार छिन जाना कई जगहों पर, जूरी में आप शामिल नहीं हो सकते,
नौकरी ढूंढना,
वो तो पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है, क्योंकि हर एप्लीकेशन फॉर्म पर वो सवाल होता है ना, क्या आपको कभी दोषी ठहराया गया है?
हाँ, वो चेक द बॉक्स।
वही, फिर सरकारी मदद मिलना मुश्किल, घर मिलना मुश्किल, यहां तक कि पढ़ाई के लिए लोन लेना भी मुश्किल। तो ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन देते हैं कि उससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लोग हमेशा के लिए दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह जाते हैं।
किताब की शुरुआत में वो जार्विस कॉटन की कहानी बताती हैं, वो इस पूरी बात को बहुत साफ कर देती हैं शायद।
हाँ बिल्कुल, जार्विस कॉटन मिसिसिपी के एक अश्वेत व्यक्ति, उनके परदादा, दादा, पिता, इन सबको वोट देने से रोका गया था, पुराने जिम क्रो कानूनों के तहत, कभी पोल टैक्स लगाकर, कभी लिटरेसी टेस्ट लेकर।
अच्छा।
और आज जार्विस कॉटन भी वोट नहीं दे सकता, लेकिन इस बार वजह कोई टैक्स या टेस्ट नहीं है, वजह है आपराधिक दोष सिद्धि, मतलब उसे किसी अपराध में सजा हुई है। तो तरीका बदल गया, पर नतीजा वही रहा, वोट के अधिकार से वंचित। ये कहानी दिखाती है कि कैसे सिस्टम अपना रूप बदल कर भी अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है।
तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? आपने कहा ड्रग्स के खिलाफ युद्ध इसका इंजन है।
हाँ, अलेक्जेंडर कहती हैं कि ये वॉर ऑन ड्रग्स ही इस पूरी मशीनरी को चलाता है। और मजे की बात यह है कि ये युद्ध तब तेज किया गया जब ड्रग्स का इस्तेमाल खासकर क्रैक कोकेन का उतना ज्यादा फैला भी नहीं था।
अच्छा।
हाँ, और इसे शुरू से ही इस तरह से लागू किया गया कि इसका निशाना मुख्य रूप से अश्वेत और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय बने। आंकड़े भी यही दिखाते हैं, सब नस्लों के लोग ड्रग्स लगभग एक ही रेट से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जेलों में अश्वेतों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है।
तो ये अपराध दर की वजह से नहीं है, बल्कि एनफोर्समेंट मतलब कानून लागू करने के तरीके की वजह से है।
बिल्कुल, पुलिस जानबूझकर गरीब अल्पसंख्यक इलाकों में ज्यादा फोकस करती है, जहां ड्रग्स की बिक्री खुले में होने की संभावना ज्यादा होती है वहां छापे पड़ते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, जबकि अमीर इलाकों या कॉलेज कैंपस में होने वाली वैसी ही एक्टिविटी को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये सीधे सीधे सवाल उठाता है कि क्या मकसद वाकई अपराध नियंत्रण है या फिर सामाजिक नियंत्रण,
और इसमें कानूनी दांव पेचों की क्या भूमिका है? आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया था।
वो एक बहुत अहम मोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ये इजाजत दे दी कि वो ट्रैफिक नियम तोड़ने जैसे छोटे बहाने बनाकर भी गाड़ी रोक सकती है और तलाशी ले सकती है। इसे प्रीटेक्स्ट स्टॉप कहते हैं।
प्रीटेक्स्ट स्टॉप?
हाँ,
मतलब बहाने से रोकना।
हाँ, अलेक्जेंडर बताती हैं कि इससे नस्ल के आधार पर लोगों को रोकने का यानी रेशियल प्रोफाइलिंग का रास्ता खुल गया, क्योंकि पुलिस के पास अब कोई भी बहाना था किसी को भी रोकने का।
और फिर पुलिस का वो सैन्यकरण, उन्हें सेना जैसे हथियार और ट्रेनिंग मिलना, और वो संपत्ति जब्त करने वाले कानून।
हाँ, सिविल एसेट फॉरफीचर। ये कानून तो पुलिस डिपार्टमेंट्स को एक तरह से पैसा कमाने का जरिया देते हैं। वो सिर्फ शक के आधार पर लोगों की नकदी, गाड़ी, यहाँ तक कि घर भी जब्त कर सकते हैं, और वो संपत्ति अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही रह जाती है, भले ही बाद में उस व्यक्ति पर कोई आरोप साबित हो या ना हो।
बाप रे।
हाँ, तो ये भी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है।
लेकिन लोग अदालत में जाकर ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो बेगुनाह हैं या उनके साथ गलत हो रहा है।
यहीं पे दिक्कत आती है। प्रोसिक्यूटर्स यानी सरकारी वकील, उनके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, और ड्रग केस में जो अनिवार्य न्यूनतम सजाएं हैं, मतलब मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस, वो इतनी कठोर हैं।
जैसे
5 साल या 10 साल जेल, चाहे आपके पास बहुत थोड़ी मात्रा में ड्रग्स क्यों ना मिले हों। तो इतनी लंबी सजा का डर होता है कि ज्यादातर लोग मुकदमा लड़ने का रिस्क ही नहीं उठाते।
अच्छा, मतलब डर के मारे कि अगर केस लड़े और हार गए तो बहुत लंबी सजा हो जाएगी।
बिल्कुल, इसीलिए 90% से ज्यादा मामलों में लोग प्ली बार्गेन कर लेते हैं, मतलब कम सजा के बदले अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, भले ही वो निर्दोष हों या उनके खिलाफ सबूत बहुत कमजोर हों। तो ये न्याय व्यवस्था कम और एक तरह की असेंबली लाइन ज्यादा लगती है, जिसका काम है सजा देना, सच पता लगाना नहीं।
और अगर कोई ये साबित करना चाहे कि उसके साथ नस्लीय भेदभाव हुआ है, वो कितना मुश्किल है।
वो भी लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, मिक्लस्की वी कैंप। उसके बाद से आपको ये साबित करना पड़ता है कि किसी खास पुलिस वाले ने या जज ने या प्रोसिक्यूटर ने जानबूझकर आपके साथ नस्लीय भेदभाव किया है।
सिर्फ पैटर्न दिखाना काफी नहीं है कि पूरी व्यवस्था में ऐसा हो रहा है।
नहीं, आप भले ही दिखा दें कि सिस्टम में पैटर्न है कि अश्वेतों को ज्यादा सजा मिलती है, लेकिन जब तक आप किसी एक व्यक्ति का इरादा, उसकी नीयत साबित नहीं कर पाते, अदालतें उसे नहीं मानती। यही वो कलरब्लाइंडनेस का पर्दा है। सिस्टम कहता है हम तो नस्ल देखते ही नहीं, तो भेदभाव कैसे हो सकता है।
तो ये सब मिलकर लोगों को जेल पहुंचाते हैं, और फिर शुरू होती है वो अदृश्य सजा जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कोलैटरल कॉन्सिक्वेंसेस।
हाँ, और यही वो चीज है जो इस पूरी व्यवस्था को न्यू जिम क्रो बनाती है। सजा काटने के बाद भी आप आजाद नहीं हैं, आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है फेलिन यानी अपराधी का, और जैसे ही ये ठप्पा लगता है, वो सारे भेदभाव जो पहले नस्ल के आधार पर होते थे वो अब कानूनी हो जाते हैं।
जैसे वोट देने का अधिकार चला जाता है कई राज्यों में, जूरी का सदस्य नहीं बन सकते, नौकरी ढूंढना वो तो आपने बताया ही कितना मुश्किल है, क्या आपको कभी दोषी ठहराया गया है, ये सवाल देखते ही कितने दरवाजे बंद हो जाते होंगे।
बिल्कुल, सरकारी घर मिलना मुश्किल, फूड स्टैम्प्स जैसी जरूरी मदद बंद हो सकती है, पढ़ाई के लिए लोन मिलना मुश्किल। अब आप सोचिए, अगर किसी के पास रहने की जगह नहीं, खाने को नहीं, काम नहीं, तो उसके वापस जुर्म की दुनिया में जाने का खतरा कितना बढ़ जाता है। ये सिस्टम लोगों को सुधरने का मौका देने की बजाय उन्हें हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल देता है। ये सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत कारगर तरीका है।
अलेक्जेंडर इसकी सीधी तुलना पुराने जिम क्रो से करती हैं, है ना?
हाँ, वो कहते हैं कि दोनों सिस्टम अश्वेत समुदाय की तरक्की के बाद मजबूत हुए। जैसे गुलामी खत्म हुई तो जिम क्रो आ गया, सिविल राइट्स मूवमेंट कामयाब हुआ तो ये मास इनकार्सरेशन आ गया।
अच्छा।
दोनों ने कानूनी तौर पर भेदभाव को संस्थागत रूप दिया, दोनों ने वोटिंग राइट्स छीने, जूरी से बाहर रखा,
और दोनों ने नस्ली अलगाव पैदा किया। जिम क्रो ने फिजिकल सेग्रीगेशन किया, अलग स्कूल, अलग रेस्टोरेंट, बसों में अलग सीटें। ये नया सिस्टम सामाजिक और आर्थिक अलगाव पैदा करता है, एक पूरे आबादी को मौकों से काटकर अलग थलग कर देता है।
और अलेक्जेंडर कहती हैं कि ये नया सिस्टम शायद ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कलर ब्लाइंड भाषा का इस्तेमाल करता है, निष्पक्ष होने का नाटक करता है।
हाँ, जिससे नस्ली इरादा छिप जाता है।
बिल्कुल, और इसे चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। किताब में एक लाइन है जो बहुत सीधी चोट करती है। आज अपराधियों के साथ लगभग उन सभी तरीकों से भेदभाव करना पूरी तरह से कानूनी है जिनसे कभी अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव करना कानूनी था। एक बार जब आप पर अपराधी का ठप्पा लग जाता है तो पुराने भेदभाव के रूप अचानक कानूनी हो जाते हैं।
ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर इसका हल क्या है? अलेक्जेंडर क्या सुझाव देती हैं?
वो कहती हैं कि जो पारंपरिक नागरिक अधिकार रणनीतियां हैं, जैसे कोर्ट में केस लड़ना या अफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई, वो इस नई जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए काफी नहीं है।
तो फिर क्या चाहिए?
एक बिल्कुल नए तरह का आंदोलन, एक जमीनी स्तर का मानवाधिकार आंदोलन।
ऐसा आंदोलन जो इस मुद्दे को सिर्फ अश्वेतों के नागरिक अधिकारों का मामला न माने।
हाँ, बल्कि इसे पूरे देश के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक नैतिक संकट के तौर पर देखें। लक्ष्य होना चाहिए लोगों की सोच बदलना, उन्हें समझाना कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसका असली चेहरा क्या है। ड्रग्स युद्ध को खत्म करना और सजा और नियंत्रण पर फोकस करने के बजाय पब्लिक हेल्थ, करुणा और लोगों के पुनर्वास, मतलब उन्हें दोबारा समाज से जोड़ने पर ध्यान देना।
तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इन विचारों से क्या सीख सकते हैं या अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम अपने आसपास की दुनिया को, खासकर जब हम अपराध, पुलिस, न्याय से जुड़ी खबरें सुनते या पढ़ते हैं, तो उन्हें ज्यादा आलोचनात्मक नजर से देख सकते हैं। सवाल पूछ सकते हैं कि किसी पॉलिसी का असर किस पर पड़ रहा है, क्या ये वाकई निष्पक्ष है जैसा दावा किया जा रहा है।
हाँ, और भाषा बहुत मायने रखती है। किसी को एक्स कॉन या कैदी कहने के बजाय पूर्व में कैद व्यक्ति कहना, ये उनके साथ जुड़े कलंक को शायद कुछ कम कर सकता है।
सही बात है, ये मानना कि उनकी पहचान सिर्फ उनकी सजा तक ही सीमित नहीं है।
हम अपने समुदायों में जो बहसें होती हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ अमेरिका जैसा सिस्टम ना हो, लेकिन सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, न्याय से जुड़े सवाल तो हर जगह हैं। हम उन नीतियों का समर्थन कर सकते हैं जो हाशिए पर धकेले गए लोगों को मुख्य धारा में लाने में मदद करती हैं।
और अगर कोई ऐसी पोजीशन में है जहां वो लोगों को नौकरी देता है, तो वो बैन द बॉक्स जैसी पॉलिसी के बारे में सोच सकता है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म से वो दोष सिद्धि वाला सवाल हटाना, ताकि लोगों को पहले उनकी काबिलियत पर परखा जाए।
हाँ, ये अच्छा सुझाव है।
और शायद सबसे जरूरी, हम इन मुश्किल विषयों पर अपने दोस्तों, परिवार, साथ काम करने वालों के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। नस्ल, जाति, वर्ग, न्याय, असमानता, इन पर खुलकर बात करना ही जागरूकता बढ़ाने और सोच बदलने की तरफ पहला कदम है।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि ये जो सामाजिक दमन या नियंत्रण की व्यवस्थाएं होती हैं, ये कितनी लचीली होती हैं, कितनी आसानी से अपना रूप बदल लेती हैं, खत्म नहीं होती, बस भेस बदल लेती हैं। और ये सवाल कि क्या अमेरिका की ये सामूहिक कैद व्यवस्था वाकई टूटी हुई है, या फिर वो अपने छिपे हुए लक्ष्य को, मतलब सामाजिक नियंत्रण को, बहुत कामयाबी से हासिल कर रही है।
और मुझे ये बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि कैसे ये कलर ब्लाइंडनेस का आइडिया, मतलब नस्ल या जाति को न देखने का दावा, इतनी गहरी असमानता को छुपा सकता है और इसे ठीक ठहरा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे भाषा का इस्तेमाल सच्चाई को ढकने के लिए हो सकता है। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव सोच का भी सवाल है कि हम किसे नॉर्मल मानते हैं।
ये किताब हमें क्राइम और पनिशमेंट के फ्रेमवर्क से हटाकर सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क से सोचने पर मजबूर करती है। ये चुनौती देती है कि हम सतह के नीचे देखें और पूछें कि सिस्टम का असली मकसद क्या है।
बिल्कुल, ये समझने के लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क देती है और ये याद दिलाती है कि न्याय के लिए लड़ाई हमेशा चलती रहती है, बस उसके तरीके और मैदान बदलते रहते हैं। और शायद अब जरूरत है कि दुनिया भर में हम ऐसी व्यवस्थाओं को पहचानें और उन्हें चुनौती दें जो दिखती कुछ और हैं पर करती कुछ और हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।